حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. एक एक करके अब लिस्ट और चीजों की दी जा रही है जो हराम की गई। पहले आपको क्या बताया गया, उन चीजों की जिनकी हुरमत है, उनकी हुरमत को पामाल ना करना। अब देखा ना मैंने आपको क्या बताया कि ये सूरत एकेडेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए है, कि यानी इसमें डूज एंड डोंट्स हैं, समझने की बातें हैं, कौन सी चीजें हराम है मेरे ऊपर। और ये हम सूरह बकरा में देख चुके हैं। मईता तो मईता, मुर्दार, चाहे खुद मर गया हो चाहे किसी ने मार दिया उसको। मुर्दार की डेफिनेशन सिंपल अगर कर रहे हैं ना, तो वो है जो जिबा ना किया गया, वो मुर्दार ही है। समझ आई बात? तो क्योंकि फिर वरना बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है कि क्या किसको मुर्दार कहेंगे। और लेकिन दो मुर्दार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि वो हलाल है, और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कौन से। अगर हदीस ही नहीं कोई समझता और हदीस को कोई मानता नहीं है, तो मुझे बताएं कभी सी फूड कैसे वो खा सकता है, क्योंकि सी फूड तो सारा ही मुर्दार है। जब आप उसको निकालते हैं तो मछली को जिबा तो नहीं आप करते, वो तो मर ही जाती है तड़प तड़प के, तो फिर वो कैसे खाएंगे। यहाँ पे तो लिखा हुआ मुर्दार जो है वो हराम है। फिर हम हदीस की तरफ आते हैं, उसमें है कि मछली और टिड्डी ये हैं जो मुर्दार हैं, लेकिन मुर्दार भी इनको आप खा सकते हैं। और दम, दम खून, खून कौन सा, दमे मसफूह, यानी बहता हुआ खून। जब आप जानवर को जिबा करते हैं तो उस वक्त वो जो खून निकलता है एकदम निकल के आता है वो, ये नहीं है कि उसके बाद जो गोश्त पे लगा रह जाता है, हम कभी गोश्त धोते हैं तो कितना खून निकल रहा होता है, तो वो वाला इसमें नहीं है। मगर जो उस वक्त बह के निकला एकदम जोश के साथ निकलता है, वो तो खून अगर कपड़ों पे भी लग जाए तो निजासत है, उसमें नहीं आप नमाज पढ़ सकते। ठीक है, बात को समझे, तो वो खून हराम है। इसी तरह बाज दफा लोग ऐसे करते हैं कि वो जानवर को, जिंदा जानवर के अंदर पोक करके ना, अस्तग़फिरुल्लाह, इसको भी एक डेलिकेसी समझा जाता है कई जगहों पे, तो वो वहीं से उसका गर्म खून निकाल के तो पीते हैं। और अरब में भी इसको बड़ी वो समझा जाता था, बड़ी एक डिश समझा जाता था, कि वो खून की ना अलग एक पार्टी होती थी, कि वो उसके खून पीते थे वहां पे जानवरों के। तो इसको इस्लाम ने हराम करार दे दिया। सिर्फ दो हैं जो खून आप खा सकते हैं, वो कलेजी और तिली, ये भी जमे हुए खून होते हैं ना, कलेजी भी जमा हुआ खून होते हैं, लेकिन ये हलाल है। वह लहमुल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त। अब गोश्त का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसकी बोटी हराम है, बाकी हड्डी यूज कर लो, उसकी उसकी चर्बी यूज कर लो, या उसकी स्किन यूज कर लो। जो हराम जानवर हैं जिनका आप गोश्त नहीं खा सकते, उनका चमड़ा यानी उनकी जो स्किन है उसकी प्रोडक्ट्स भी नहीं आप यूज कर सकते। यानी इसकी पिग स्किन हो गया, स्नेक स्किन हो गई, या ये टाइगर स्किन हो गई, या लूमड़ी की, फॉक्स की स्किन के कई चीजें मिलती हैं। अगर वो ऐसे नहीं कि एक फेक वैसे ही बना के उसका डिजाइन बनाया होता है, वो अलग बात है, वो नहीं बात हो रही। वो जो प्योर वाकई जो लूमड़ी की, फॉक्स की स्किन की चीजें होती हैं ना, कभी बैग होते हैं, कभी जैकेट, कभी जूते, या इस तरह की टोपियां बनाई होती हैं, ये अलाउड नहीं है हमें इस्तेमाल करना, क्योंकि ये जानवर जो खा नहीं आप सकते, उनकी आप चमड़ा भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, बात समझ आ गई। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह, और जो पुकारा गया हो वास्ते गैर अल्लाह के, गैर अल्लाह के वास्ते पुकारे जाने का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि ऊंची आवाज में पुकारना। तो मतलब क्या है कि यानी किसी के लिए जिबा किया जाना, जो जैसे अल्लाह अल्लाह ताला के नाम के अलावा किसी के नाम पर जिबा किया गया हो, या बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर कहा जिबा करते हुए, वह बिस्मिल्ली रसूलिल्लाह भी कह दिया, बिस्मिल रसूलिल्लाह भी कह दिया, आपने अल्लाह का नाम भी ले लिया और रसूल का नाम भी ले लिया, किसी और का नाम नहीं साथ ले सकते। ये नहीं है कि सिर्फ कि अल्लाह ताला का नाम के अलावा किसी का नाम लिया। नंबर टू ये भी है कि अल्लाह का नाम लिया और साथ किसी और का भी ले लिया, वो भी हराम है। नंबर थ्री, अल्लाह का नाम नहीं लिया, किसी का भी नहीं लिया, तब क्या हलाल है, तब भी हराम है वो। क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे सूरह अनाम में कि जिन चीजों पे अल्लाह का नाम ना लिया गया हो उनको मत खाओ, तो तीन चीजें हो गई ना, एक वो चीज है जिसमें अल्लाह के नाम के अलावा किसी और का नाम ले लिया, और ये अक्सर क्यों किया जाता है, अक्सर औकात ये इसलिए किया जाता है ताकि किसी का तकर्रुब हासिल हो, किसी की खुशनुदी हासिल हो, कोई हमारे काम बना दे तो उसके नाम के ऊपर जिबा कर देते हैं जानवर। समझ आई बात, कि ये फलां के नाम पे है। नहीं, मिसाल के तौर पे कोई अगर कहता है कि ये इमाम हुसैन के नाम पे है मैं जिबा कर रहा हूं, तो ये हराम हो गया, ये ऐसे ही हराम है जैसे खनजीर हराम है। कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जानवर को जिबा करे, उनका नाम ले, अगर उनका नाम नहीं भी लेता लेकिन दिल के अंदर नीयत यही है, मुंह से चाहे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहा लेकिन नीयत यही है कि फलां की खुशनुदी हासिल हो, तब भी वो हराम है। समझ आई बात। हाँ, ये अलग बात है कि कोई कुछ जानवर को जिबा करता है और उसका गोश्त तकसीम करता है और सोचता है कि ये सदका है, इसका अजर फलां को मिले, या अकीका है तो ये इस बच्चे के लिए तरफ से जानवर दिया जा रहा है, वो एक अलग चीज होती है, वो उसके नाम पे नहीं किया जा रहा, नाम पे करना किसी के अलग है बात। समझ आ गई बात, कि किसी का नाम इसके ऊपर लेना यानी अल्लाह ताला के अलावा अल्लाह के नाम के साथ, या अल्लाह का नाम ही नहीं लिया, किसी का भी नहीं लिया, सब किस्म के हराम हो गए। ये इंपॉर्टेंट बात है। वल मुनखनिका, तो और जो गला घुट के मरने वाली, यानी कोई जानवर कहीं स्ट्रेंगल हो गया, कहीं फंस गया, उसके गले में रस्सी फंस गई और वो चोक हो गया, मर गया उससे, या फिर मौकूदा या चोट खा के मर गया, जानवर आपस में कभी लड़ रहे होते हैं तो चोट लगी एक को या किसी और तरह चोट लग गई। अब जैसे आज के वक्त में कोई किसी जानवर को ऐसे मारे, मसलन डंडे से मारा है और वो उससे ही मर गया जानवर, या गर्दन टूट गई उससे मर गया, या मिसाल के तौर पे एक चोट लगी है, ये भी चोट ही हो गई कि शॉक दे दिया उसको, झटका लगा दिया उसको, अब ऐसा शॉक दिया कि वो वहीं मर गया। वल मुतरद्दिया, तू और बुलंदी से गिर के मरने वाला, टीले पे, किसी पहाड़ पे, कोई छत पे चढ़ा हुआ था वहां से गिर गया। वन नतीहा, तू यहाँ टक्कर खा के मरने वाला, कोई गाड़ी जा रही थी उसे टक्कर लग गई, और कोई हिरन था या कोई कोई चीज थी वो देखे, उसी वक्त वो मर जाते हैं, तो ये सारी हराम है। वमा अकल सबउ, और जो खा जाएं दरिंदे, मतलब शेर वगैरह ने शिकार किया हुआ, अब वो शिकार में से, तो आप वो देखा होगा आपने डॉक्यूमेंट्रीज में भी दिखाते हैं, वो थोड़ा सा खा के चले जाते हैं, फिर बाद में गिद्ध और जानवर आ जाते हैं, फिर वो जब शेर हट जाता है तो वो खा लेते हैं, तो ऐसा कोई गोश पड़ा हुआ है और जानवर को शेर ने खाया या किसी भी और दरिंदे ने चीर फाड़ के खा लिया हुआ और उसका गोश्त बाकी पड़ा हुआ है, तो उसको भी नहीं खा सकते, ठीक है, वो भी हराम है। इल्ला, अब एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन कहाँ से है, ये मुनखनिका सू से लेके सबू तक एक्सेप्शन, इल्ला मादक कही तुम, सिवाय इसके जो जिबा कर लिया तुमने, यानी जो गला घुट के मरने के लिए था, अब वो गला घुट गया उसका लेकिन उसमें थोड़ी सी जान थी, अभी जब आप उस तक पहुंचे तो उसमें जान थी, आपने उसको जिबा कर लिया तो ठीक है। इसी तरह वल मौकूजा, जो चोट खा के मरने वाला है, चोट लगी भी थी लेकिन अभी मरा नहीं था, या बुलंदी से गिरने वाला, या टक्कर खा के, या जिसको दरिंदे ने चीरा फाड़ा था लेकिन वो मरा नहीं था अभी, ठीक है, तो उसी वक्त आप पहुंच गए और उसके अंदर जान थी तो आपने उसको जिबा कर लिया, ठीक है। अब ये देखें, ये अलग है, इनमें वमा उहिल्ला लिल गैरि ला नहीं आ रहा, कि वो भी जो दूसरी जगहों पे, वो तो अब चाहे जिबा ही क्यों ना ही किया गया, चाहे मैंने आपको बताया ना तरीका वही जिबा करने वाले का, लेकिन वो भी इसके अंदर शामिल है जो अल्लाह का नाम चाहे लिया हुआ है लेकिन नियत किसी और की है, नियत में किसी का किसी को राजी करना, किसी का तकर्रुब हासिल करना, ये है। अब देखें इसमें माँ का लफ्ज आया है, माँ का, वह माँ उहिल्ला ली गैरि अल्लाह, और जो भी का मतलब सिर्फ जानवर नहीं, जो भी, चाहे वो खाने की कोई भी चीज हो, हलवा है, पूरियां हैं, खीर है, और ऐसी चीजें हैं जो दूसरों के नामों से मशहूर की जा रही हैं, आप के सामने है इमाम जाफर के कुंडे, अब किसके नाम से वो मशहूर हुए हैं? इसी तरह आप दिवाली की मिठाई है वो किसके नाम से मशहूर है? वो उनके बुत के नाम से मशहूर की गई है, उसके नाम की है ना। वो वैसे क्यों नहीं आपको किसी और दिन मिठाई दे दें, लेकिन वो अपने कहते हैं ये हमारी दिवाली की मिठाई है, इसलिए किसी और के नाम पे पुकारा जा, कोई भी चीज खाने की किसी और की खुशनुदी के लिए वो बांटी जा रही है, दी जा रही है। तो अब क्या है, इमाम जाफर के कुंडे भी क्या है या वो दिवाली की मिठाई भी क्या है? किसी और की खुशनुदी है ना उसमें, तो ये फिर वो उस चीज को हराम कर देता है। अल्लाह ताला ने ये सब चीजें हमारे लिए बनाई हैं और वो ही इस चीज का हकदार है कि उसका नाम लिया जाए, ना कि दूसरों के नाम ले लेके और उनके नामों की कुर्बानियां या नजरे नियाजें या इस तरह की चीज की जाए। ठीक, बात समझ आई? अच्छा, खंजीर का भी एक मैं बात आपको कह दूं कि खंजीर की भी लोग आज ये, अल्लाह ताला हमें माफ करे हमारे लोगों को भी, क्या इनकी अकलों को हो गया कि वो कहते हैं कि नहीं जी वो खंजीर तो ऐसा था। अब भला खंजीर में और बकरी में क्या फर्क है, वो भी चार टांगों वाली, वो भी चार टांगों वाला, और इतने क्यूट होते हैं, इतने ऐसे होते हैं और साफ सुथरे हैं। अब ये तो पहले जमाने के होंगे जो गंदे होंगे, आज तो इतने अच्छे साफ सुथरे हैं। हालांकि अगर देखें इनकी, इन खंजीरों को अगर आप इनके ऊपर थोड़ा रिसर्च करके देखें तो ये समझ लें, पता है वो काम करते हैं जो वैक्यूम का काम होता है। आपके घर में वैक्यूम का क्या काम होता है? गंदगी को साफ करना, गंदगी उठाना, ये अपने अंदर गंदगी उठाते। अल्लाह ने इनको एक और काम के लिए बनाया, खाने के लिए नहीं उनको बनाया। वो एक गार्बेज बिन है जिसमें गार्बेज सारा जाता जाता है। अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया। अगर हमें यार ये बात नहीं भी पता हो तो तब भी हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि अल्लाह ताला का हुक्म। अब वो चाहे साफ सुथरा है नहीं है, क्या भी है, वो सोने का भी बन जाए, हमारे लिए वो हराम ही है क्योंकि हमें हमारे रब ने हुक्म दे दिया। लेकिन ये तो निजस जानवर है, नापाक जानवर है, और शरीयत हर उस चीज से रोकती है जिसमें नापाकी है, क्योंकि इंसान जो चीज खाता है उसके असरात होते हैं उसके ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके किरदार पे, उसकी इबादात पे, उसके अमल पे। और जो जो चीज खाता है उसकी बड़ी मुशाबहत है उस खाने, उस चीज के साथ जो उसने खाई है। आप देखें ये जानवर के बारे में ये आता है कि ये सबसे ज्यादा बेहया जानवर है। किसी ने इसको देखा भी कि ये किस तरह, उन्होंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की कि देखूं तो सही कि ये कैसा है। तो उन्होंने कहा, मैं एक फार्म पे गया, वहां पे जाके मैंने देखा कि ये वाकई क्या इस तरह का है। तो उन्होंने कहा कि जो इसका मेल थे ना, मेल पिग्स, वो कभी किसी फीमेल के पास जाते थे, कभी किसी के पास जाते थे, हर एक के साथ वो मेटिंग करते थे और उसके बाद दूसरे मेल्स कुछ भी नहीं कहते थे। आप देखते हैं मुर्गा हो गया, शेर हो गया, बकरी हो गई, ये अपनी फीमेल को किस तरह वो प्रोटेक्ट करते हैं, लड़ते हैं बाकायदा कि मेरी फीमेल के पास ना दूसरा है, उन्हें इसको नहीं कोई फर्क पड़ता। और आप ये खाने वाले जो हैं उनकी भी आदत और अतवार में यही चीजें देखते हैं ना। फिर हदीस में आता है दयूस, जो जन्नत में ही दाखिल नहीं होगा। दयूस का पता है आपको कौन होता है? जो अपनी औरत के बारे में हया ना खाए, जिसको इतनी शर्म ना आए कि मेरी औरत किसी और के साथ अफेयर चला रही है, किसी और के साथ बातें करती है, या किसी और के साथ इसका कोई ऐसा ताल्लुक है और उसको इससे कोई फर्क ना पड़े। औरत से मतलब है बीवी है, चाहे बेटी है, चाहे माँ है, चाहे कोई भी, इट डजंट केयर, और उसको नहीं फर्क पड़ता। बेटी बेहिजाब फिर रही है, वो बॉयफ्रेंड रख रही है, वो या बीवी कहीं और बातें कर रही है, उसको नहीं इस बात से। ये दयूस है, फरमाया जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो जो ये खाने खाएंगे या इन इन खानों की किसी ना किसी तरह कोई ट्रेसेस उनके खाने में आएंगे तो वो भी दयूस ही हो जाएंगे, जैसे ये जानवर दयूस है। तो ये खाने हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं, खाने हमारी आदत के ऊपर इफेक्ट करते हैं, खाने हमें इबादात पे इफेक्ट करते हैं, हमारी नेचर को इफेक्ट करते हैं। आप देखते हैं वो कौमें जो कुत्ते खाती हैं, और अल्लाह ताला माफ करे ये जिन्होंने सांप खाए और जिन्होंने ये चमगादड़े खाई, उसके बाद दुनिया भुगत रही है उनकी इन गंदी आदत को, पूरी दुनिया भुगत रही है कि ऐसी बीमारियों ने जन्म लिया कि जिन जो बीमारियां ना हमारे बाप दादा ने कभी सुनी ना उनको कभी कोई जानता था। दुनिया हैरान है कि ये बीमारी है क्या, वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये है क्या चीज। तो ये ऐसे ही नहीं होता, अल्लाह ताला की देखें इतनी हिकमत है ना सब चीजों के अंदर। तो मैं अगर इस बात को बिलीव कर लें कि जो मेरे रब ने फरमाया ना उसके अंदर मेरे लिए खैर ही है और मैंने वो ही खाना है। अब कोई उसको चाहे कहे ये भाई बड़ा साफ सुथरा हो गया, ये ऐसा जानवर हो गया, तो इट्स डजंट मैटर। फिर वमा दुबिहा अलन नुसुब, और जो आस्तानों पे जो जिबा किए जाए, अब इसमें और उसमें क्या फर्क है? वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह और वमा दुबिहा अलन नुसुब, इसमें क्या फर्क है दोनों के अंदर? आस्तानों में पहले मैंने आपको बताया कि वो बुतों के पास ना एक जगह रखते थे जहां पे वो स्पेसिफिक वो जगह होती थी, यहाँ पे आप आके जानवर जिबा करें ताकि इस बुत का तकर्रुब लेने के लिए, ठीक है, इस बुत के जाहिर है उसकी उसकी जगह है वो, जहां पे उसका जो इबादत घर बनाया हुआ है उसके लिए, इबादत खाना बनाया हुआ, उसके पास ही वो जगह होती थी जहां पे जानवर जिबा किए जाते थे। और यहाँ उहिल्ला लिगैरिल्लाह में पुकार की बात है कि किसका नाम पुकारा जाए, ज़ुबिहा अलन नुसुब में जगह की बात है, उस जगह पे लाके चाहे अल्लाह का नाम लेकर और जिबा के तरीके के साथ जिबा किया जाए, लेकिन वो जगह ऐसी है जिस जहां पे मिसाल के तौर पे किसी का तकर्रुब चाहते हैं कि इस फलां बुजुर्ग या बुत या फलां औलिया अल्लाह या ये इनके पास मेरी मुरादें पूरी हो जाएं, ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करा दें, इनसे हमारे कोई काम बन जाएं, तो वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अगर कोई कोई जानवर लेकर जाता है वहां पे जिबा करता है तो वो जानवर हराम हो जाता है। किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि फलां मुकाम पे मैं कुर्बानी कर सकता हूँ, कि मैंने उसकी कुर्बानी की एक मसलन की मन्नत मानी हुई थी, तो क्या मैं वहां पे कर लूँ, यानी पहले से मानी होगी मन्नत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उस जगह पे कोई बुत था, तो वहां पे कोई बुत है? तो फरमाया नहीं। तो फरमाया जाहिलियत के जमाने में कोई वहां पे ऐसा बुत तो नहीं होता था? फरमाया कि नहीं, उस वक्त भी नहीं होता था। तो फरमाया किसी खास शख्सियत का की तरफ निस्बत तो नहीं है उस जगह की, यानी कोई खास ऐसा कोई बंदा कि जिसकी साथ उसकी जगह की निस्बत हो, जिसके यानी वहां पे जाके खास तौर पे जो इसलिए कोई इंसान कर रहा है कि भाई ये इसकी ये जगह है, इसका ये मज़ार है, या इसकी ये कोई ऐसी जगह है जिसके साथ उसका नाम अटैच है, तो ऐसा तो नहीं कोई चीज? तो फरमाया नहीं। तो आप सर ने फरमाया ठीक है, फिर तुम जाके वहां पे जिबा कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप सोचते हैं, मसलन हम में से कोई सोचता है कि भाई देखो वहां पे ना बड़ी ऐसी कच्ची बस्ती है, बहुत गरीब लोग रहते हैं, चलो मैं वहां पे जाके जिबा कर देती हूँ, वहीं पे गोश्त बांट दूंगी आसानी हो जाएगी, वो एक अलग बात है। लेकिन जब मैं सोचूंगी कि मैं फलां मिजार पे क्यों ना जाके जिबा करूं, तो मेरा मकसद क्या है? उस मिजार पे ही क्या गरीब लोग हैं? असल में मेरा मकसद क्या होता है कि ये जो मिजार वाले हैं इन तक मेरी कोई यानी मेरी एक आ, आ, कोई कबूलियत है, या कोई कोई मेरा काम है वो इनके जरिए हो जाए, इनकी खुशनुदी में पालू, इनकी रजा मुझे मिल जाए, ये मेरे से खुश हो जाए, ये मकसद होता है। ऐसे ही नहीं जाके लोग वहीं पे क्यों देख देते हैं, वहीं पे जाके क्यों खाना तकसीम करते हैं, क्या वजह होती है? असल में उन मिजार वालों को खुश करना होता है ना, गरीब लोगों तो आप कहां भी खाना खिला ले, वहीं जाके क्यों? उस जगह की निस्बत की वजह से फिर वो जानवर हराम हो गया, क्योंकि ये उस जगह पे जाके जिबा किया गया जिस जगह की निस्बत किसी ऐसे इंसान के साथ थी जिससे जिसके नाम से वो मशहूर था और जिसका तकर्रुब हासिल करना चाहते हैं। अब चाहे नाम अल्लाह का ही ले लें, चाहे जिबा भी आपने ठीक तरीके से कर लिया, वो है जानवर हराम ही, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज का जिक्र आता है, एक उससे हटके जो इंसान खाता पीता है ना उससे हटके, मगर वो चीज भी हराम है, इसलिए उसको भी यहाँ पे और आप अंदाजा करेंगे कि वो किस लेवल की हराम है, क्योंकि यहाँ पे खंजीर की बात आ रही है। अच्छा, आप नोट करें, यहाँ पे शराब की तो बात नहीं आई, तो सारी चीजें एक जगह पे नहीं है, और जगहों पे कुरान पाक में है, सब इसे करना फिर आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये नहीं कहना कि सिर्फ यही चीजें हैं ना हराम, बाकी तो सारी हलाल हैं, तो इसलिए बाकी हम कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अब क्या चीज है जो आखिरी चीज है? तस्तकसिमु बिल अजलाम, कि तुम तस्तकसिम, काफ सीन मीम से है। अब इसके दो माने हैं, अब दो माने में आपको बताती हूं। देखिए, पहला माना क्या है तकसीम करना। तो तकसीम करना यानी तुम तकसीम करते हो तीरों के जरिए। पहले जमाने में वो तीरों के साथ बड़ी ये इस तरह की चीजें किया करते थे कि मिसाल के तौर पे एक ऊंट 10 लोगों ने मिलके खरीद लिया, अब उसको जिबा किया तो अब तीर 10 हैं, 3 तीरों पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ और 7 तीरों पे लिखा हुआ है किसी को मिसाल के तौर पे किसी को 50% मिलेगा, किसी को 10%, किसी को 5%, किसी को इतना मिलेगा, तो उतना ही उसको गोश्त मिलता था और 3 लोगों को कुछ भी नहीं मिलता था। तो ये तकसीम करना अजलाम के जरिए, तीरों के जरिए, ये भी नाजायज है, ये भी हराम है। अब देखें, आज तीरों वाला तो चक्कर नहीं चलता, मगर आज और तरीके हैं जिनके जरिए से ये देखा जाता है इसको मिलेगा और इसको नहीं मिलेगा। और इनमें बहुत बड़ी मिसाल एक लॉटरी की है। लॉटरी में भी क्या है, क्यों है लॉटरी हराम? सब ने पैसे डाले और एक टिकट लिया, सब ने इक्वल पैसे डाले, जैसे वो ऊंट में डाले, सब ने ऊंट खरीदा, एक सबने मिलके खरीदा था ना, सबको हिस्सा मिलना चाहिए था, जायज तो यही था, लेकिन हुआ क्या, सिर्फ एक को ही लेके चला गया लॉटरी, सारों के पैसे एक को मिल गए बगैर किसी मेहनत, बगैर किसी कारकर्दगी के, और किस तरह, पर्चियां डाल के, उन्होंने तीर डाले, आपने पर्चियां डालनी, क्या फर्क है? ठीक है, तो इस तरह से करना ये हराम में आता है। अब समझ आ गई कि अब आप देख लें कि कहाँ पे जिक्र हो रहा है इस चीज का, और लॉटरी में कितनी बड़ी कबाहत है। लॉटरी को अंदर खेलना भी नहीं, हम तो जब हमारी लॉटरी अगर निकल आई तो हम गरीबों में बांट देंगे, भाई जो चीज हराम ही है उसको आप गरीबों में बांटने का क्या बात है? तो ऐसे ही है जैसे हम कहें हम डाका डालेंगे और उसके बाद जो हम डाका डाल के पैसे मिलेंगे ना वो हम गरीबों में बांट देंगे, तो ये कोई नेकी का काम नहीं है, ऐसी चीज के अंदर ही नहीं जाना जो हराम है। नंबर 2, इसका मतलब क्या है? तस्तकसिमु, तुम तलब करो किस्मत, मालूम करो किस्मत का हाल बिल अजलाम, तीरों के जरिए, जैसे वो लोग करते थे कि एक आदमी के पास तीर होते थे, उसके पास जाके कहते थे भाई ये काम करें कि नहीं करें, एक तीर पे कुछ लिखा हुआ है, एक पे कुछ और लिखा हुआ है, वो कहता था अगर ये वाला यहाँ को हो गया, चला गया, तो फिर ये कर लो, अगर ये, वो तरीके थे उनके एक फाल निकालने के या हाल बयान करने के कि ये काम करें कि ना करें, ये काम हमारे लिए बेहतर है कि नहीं बेहतर। अगर वो निकलता था तीर जिसमें है कि लिखा होता था कि कर लो तो वो कर लेंगे, और अगर नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। तो हम आज देखें कि हमारे तो उनके पास तो तीरों की एक चीज थी ना, हमने तो दुनिया की कोई चीज छोड़ी ही नहीं, तोते से लेके कछुए से लेके पता नहीं क्या क्या चीजें, हंसी भी आती है। और अस्तग़फिरुल्लाह, इस उम्मत का क्या हाल हो गया कि यानी एक जगह पे मैंने देखा कि उन्होंने कहा ये जो मैच है क्रिकेट मैच कौन जीतेगा, ये एक पता नहीं कोई कछुआ है कहीं वो बताएगा कि किस तरह से, वो अल्लाह बेहतर जानता है वो कैसे करता था, लेकिन उसकी कोई चीज थी जिससे पता चलता था कि ये कौन सी टीम जीतेगी। ओ खुदा का खौफ करो, क्या कह रहे हो? फिर आप देखें ये टैरो कार्ड, हाथों की लकीरें, हॉरोस्कोप, फिर वो जनाब आपका नाम के वो पूरा जायचा बना के आपके पता नहीं क्या नंबर कैलकुलेट करते हैं, क्या उसके नंबर बना के फिर लकीरें लगा के फिर किस किस तरह से मालूमात करते हैं। लोग इतने इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि बाकायदा सुबह उठ के ये हफ्ता मेरा कैसा गुजरेगा उसको जरूर पढ़ना है, और उसमें एक ही घिसी पटी हमेशा बातें लिखती हैं, आप सफर ना करें, फलाने दिन ये ना करें, यार ऐसे ना करें, और हम अंधों की तरह उसके ऊपर बिलीव करते हैं। उसको पढ़ना भी हराम है, उसको फॉलो करना भी गलत है, ऐसी मालूमात लेना भी सही नहीं है। ये नजूमियों की दुकानें कैसे चलती हैं बताएं? ये आमिल बाबों की, नजूमियों की, हॉरोस्कोप वालों की, जगह जगह इन्होंने अपने बोर्ड लगाए हुए हैं, तावुन हम कर रहे हैं इनके साथ तो चल रही है ना, अगर हर कोई इनका तावुन छोड़ दे तो कल को उसको भी कहीं मजदूरी करनी पड़ेगी, उसको भी काम आसान लगता है ना, बैठे बैठे किसी को कुछ बता दो, किसी को कुछ बता दो, चलो उनका भी कारोबार चल गया, और हमारे ईमान तो माशाल्लाह इस पाए के ना, फलाना बाबा ना बड़ा ठीक बताता है यहाँ पे शादी करें ना करें, ये करें ना करें, वो जाके उससे पूछे, सोचे हम कितने अकीदे में कमजोर हो चुके हैं, ये हमारे हालात हैं, जिब्त ताकूत में हम पड़ चुके हैं, तस्तकसिमु बिल अजलाम हम करने लगे हैं। यानी बाकायदा इसके ऊपर लोगों को बुलाया जाता है और टीवी पे बिठाया जाता है और पूछा जाता है जी आप बताएं कि इसका क्या होगा। अरे ये कई प्रोग्राम्स तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर लोग लिख के भेजते हैं हम सफर करें या नहीं करें, हम ये पढ़ाई करें या नहीं करें, मेरा कब तक शादी का इम्कान है, पता नहीं फलाने के साथ शादी होगी कि नहीं होगी। ये तो बस सारा कुछ फिर इनके हाथों में ही है कि किस्मत के हाल तुम मालूम करो, ये भी हराम है, हराम है उम्मते मुस्लिमा, ये हराम है। फिर क्यों है कि मुसलमान मुल्कों में इनकी दुकान कैसे हो सकती है जिनके कुरान में ये लिखा हो कि ये हराम है, कैसे वहां पे उनकी दुकान चल सकती है? इससे पता चलता है कि हमारी जिहालत की इंतहा क्या है कि हमें यही नहीं पता कि हमारी किताब में क्या लिखा है, और नंबर टू हमारे अकीदे की कमजोरी कितनी ज्यादा है। और जिनको पता भी है वो फिर इन्हीं चीजों में आप यहाँ पे बैठ जाएं। अगर मैं, अल्लाह माफ करे मुझे, अगर मैं आज यहाँ पे सिर्फ इतना कहना शुरू कर दूं ना कि मेरे पास ऐसी चीजें हैं कि मैं बता सकती हूँ और ऐसे कुछ उलूम हैं, कुछ वो उसको क्या कहते हैं, कोई स्पिरिचुअल ये कोई वो है, पता नहीं क्या इस तरह की कोई चीज कहते हैं, तो आप हाँ रूहानी, रूहानी इनके पास उलूम है। आप देखिएगा कि यहाँ पर गाड़ियों की लाइनें लग जाएंगी और पैसे भी बहुत मिलेंगे, और वो भी मतलब छुपा छुपा के मुट्ठियों में दे दे के जाएंगे, चाहे आप कहें भी कि मैंने मुझे नहीं चाहिए। ये तो बड़ा अच्छा धंधा है ना, बड़ा अच्छा कारोबार है। इसीलिए आज आप देखते हैं कि इतने लोग बैठे हैं क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाली इतनी खलकत है जो अपने मुसलमानों में से है। तो अंत तकसीम बिल अजलाम, अगर पास्ट में ये कर चुके हैं तो तौबा इस्तगफार करें, तौबा करें बहुत ज्यादा, क्योंकि खिंजीर को खाने को तो बहुत हराम समझते हैं लेकिन तस्तकसीमु बिल अजलाम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो क्या हुआ इससे? और बाज लोग तो इसको फॉर फन से कहते हैं जस्ट, ओके आपका स्टार कौन सा है पे, इसका क्या ताल्लुक है स्टार कुछ भी नहीं, मैंने देखना है मैच करता है या नहीं। अच्छा इसीलिए नहीं आप लोगों की बनती क्योंकि आपके स्टार नहीं मैच करते, ये क्या है? सितारे आप हमारी किस्मत के हाल बताएंगे कि हमारी किससे मैचिंग हो सकती है? नहीं, सितारों के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारी किस्मत का इख्तियार रखते हैं। और अगर कुरान पढ़ने वाले इससे ना बाज आए तो फिर तो और ही ज्यादा शर्म की बात है ना। तो इन चीजों को बताना चाहिए अपने लोगों को भी कि ये हराम है, हराम है। और तब के लिए ये आयत आप हाईलाइट कर लीजिए, और हराम के लिए और कौन सा लफ्ज, ये तो सारों को ही पढ़ना तो आता होगा, हुर्रिमत, हुर्रिमत। ये तो जिसको नहीं भी अरबी आती वो भी समझ सकता है हुर्रिमत का क्या मतलब है। बताएं लोगों को कि ये हराम है, मत इस चीज के अंदर पढ़ो। इंसान के साथ जो होना है वो तो हो के ही रहना है, लेकिन आप ये देख लें कि अपना ईमान इंसान गवा देता है। वैलिकुम फिस्क, ये सारे नाफरमानी के काम है, गुनाह के काम है, नेकी का काम नहीं है ये। ये जितनी लिस्ट दे दी गई है ना, गुनाह है। मत जाओ मेजारों पे जाके वहां पे देगें चढ़ाओ, मत दूसरों के नामों के ऊपर तकसीम करो चीजें, मत पुकारो खानों पे और चीजों पे दूसरों के नाम। अल्यौम यइसल्लदीन कफरू मिन दीनिकुम फला तख्शौहुम वख्शौहुम, आज मायूस हो गए हैं कौन, कफारू जिन्होंने कुफर किया, किस चीज से मायूस हो गए, मिन दीनिकुम तुम्हारे दीन से। क्या मतलब दीन से मायूस हो गए, मतलब काफिर मायूस हो गए कि ये कभी इस दीन को मिटा सकेंगे या बदल सकेंगे या कोई डैमेज कर सकेंगे इसको। क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने इस दीन को मुकम्मल फरमा दिया, इस दीन की अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ले ली। अब उस जमाने से आज तक देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब से ये आयत उतरी आज तक कितने लोगों ने कोशिशें की कितने लोगों ने, अब वो आप अस्तग़फ़िरुल्लाह, हमें समझ नहीं आती कि कभी कभी हम ऐसी चीजों को भी प्रमोट कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। ये देखें ये वाला कुरान, इसके ऊपर ना जाना, इस वेबसाइट पे ना जाना, ये बिल्कुल गलत है, इसको ना फॉलो करना। आपने तो उसको और प्रमोट कर दिया, वरना तो उन लोगों को कोई जानता ही नहीं था। तो कुरान को नए से नई बनाने की, यानी उसको कुरान तो नहीं कहेंगे मगर नए से नई ऐसी बातें बना के और कहना ये कुरान है, इसकी कोई कम नहीं कोशिशें की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से ही लोग शुरू हो गए थे कि हमारे पास वही आती है, लेकिन वो सब मिट गए। देखिए अब ये वो दीन है कि जैसे कोई कहे ना, कोई बिल्डिंग को शूट करता है, शूट करता है, शूट करता है, फिर उसको पता चलता है वो नहीं, ये तो बुलेट प्रूफ है, इसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसी तरह ये दीन है कि इसके ऊपर बहुत लोगों ने कोशिशें की हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको प्रिजर्व किया। तो ये समझते हैं कि जैसे पिछले अधियान थे वो बदल गए, उनकी किताबें बदल डाली, उनका कुछ भी ओरिजिनल नहीं रहा, कोई भी ओरिजिनल फॉर्म में उनकी चीजें नहीं रहे, तो शायद इसी तरह ये इस दीन का कर सकेंगे? नहीं, इस दीन के साथ ये नहीं काम हो सकता। जब मुसलमान इस दीन पे कायम रहें और इसके साथ कमिटेड हों, तो फिर वो ये नहीं कर सकते। जब वो देखेंगे ना कि ये लोग तो अपने दीन से कितना कमिटेड है, तो जाहिर है उन्होंने उस वक्त भी कोशिश की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी, ओहद में भी, बदर में भी, कैसे इस दीन को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन फिर उनको समझ आ गई कि ये नहीं हो सकता। उनको पता चल गया कि अब हम इनको काफिर नहीं बना सकते। तो मुसलमान का जो अमल होता है ना, जो उसका स्ट्रॉन्ग इस अपने दीन के साथ जो उसकी कमिटमेंट होती है ना, वो दूसरों को मायूस कर देती है कि जी इसको तो बड़ा हम समझाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं समझता, तो उनको पता है ये तो बड़ा सख्त है अपने दीन में। तो फला तख्शौहुम वख्शौनी, इनसे मत डरो, मुझसे डरो, यानी उनसे डरने की क्या जरूरत है। कभी इस बुनियाद पे दीन के फैसले ना करें कि लोग क्या कहेंगे, इस बेस के ऊपर अपने डिसाइड ना करें कि मैं ये करूं कि ना करूं, क्योंकि मुझे डर लगता है अगर मैं करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, और मेरे दुश्मन तो बड़े ही स्ट्रॉन्ग है, वो मुझे बदनाम ना कर दे। नहीं, फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे मत डरो। ये खशियत कौन सा डर होता है? किसी की अजमत की वजह से, उसके इल्म की वजह से, उसके मर्तबे की वजह से जो डर होता है। तो हमें बाज दफा लोगों की धाक हमारे दिल में ऐसे बैठी होती है कि उनसे डर लगता है, कि इतनी हम उनको बड़ी चीज शायद समझते हैं। तो उनसे खौफ मत खाओ, अल्लाह से खौफ खाओ कि वो ना नाराज हो। तो वो तो खैर कोशिशें कर करके थक गए हैं। हाँ, तुम अब फिर नाफरमानियां ना करना, तुम डरते ही रहना, कोई ऐसे काम ना करना जो अल्लाह की नाराजगी की हो। लेकिन आज हमारा सारा ब्लेम देखें, हम अपनी जो बदामालियां, उनका ब्लेम किस पे डालते हैं? काफरों पे। जब देखो, जिस तहरीर में देखो, यहूदियों ने ये साजिश कर दी, फलानों ने ये कर दी, हनूद ने हमारे खिलाफ वो कर दिया, ये तो हमें मिटाने पे तुले में, ये वेस्ट देखो ये मुसलमानों के खिलाफ ये कर रहा है, ये कर रहा है। याद रखें, अगर आप खुद अल्लाह के दीन के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, कमिटेड हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लादीन अल यौम या इस अल्लादीन कफरू मिन दीने को, वो कभी आपको हटा नहीं सकते। मगर हम इस तरफ आते नहीं है ना, अपने अमल को दुरुस्त करना नहीं, तो सारी तवज्जो इस पे है कि वो दूसरे हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो दूसरों ने तो ये 1400 साल में इतना किया ही है ना, और वो करते रहेंगे। हमारा काम ये नहीं है कि हम ये देखें कि वो क्या कर रहे हैं, हम उनकी साजिशों को खोल खोल के लाके निकालें। हमारा काम ये है हम अपने आप को दुरुस्त करें, ठीक है? वो करते रहे हैं और करते रहेंगे। हम अपनी सारी एनर्जी उसी में लगा देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये सारी बातें क्यों आ रही हैं हलाल हराम की बातों के बाद? इसलिए कि ये बताया जा रहा है कि जहां पे अल्लाह ताला लिमिट्स लगा देना, वहां पे रुक जाना है, चलना वही है जहां पे अल्लाह इजाजत दे। लोगों को देख के नहीं चलना, लोगों को देख के रुकना नहीं है। और लोग जब आपको देख लेंगे ना कि ये तो अपने दीन में मजबूत है, तब वो खुद खुद ही आपसे हट जाएंगे, मायूस हो जाएंगे। अल्यौम अखमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। तीन बातें कही गई आज के दिन। आज का मतलब ये नहीं कि आज, बल्कि जिस दिन ये आयत उतरी, आज के दिन फरमाया अल्लाह ताला ने कि मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। अकमलतु, कामिल, परफेक्ट कर दिया। वह अतममतु, और तमाम कर दिया, कंप्लीट कर दी तुम पर अपनी नेमत। तो अपनी नेमत कंप्लीट करने का मतलब क्या कि अगर कोई रह भी गई थी, कोई आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कहीं कोई अध्ययन में कोई चीज नहीं बताई गई थी, कोई कहीं चेंजेस आ गई, कोई कुछ हो गया, अब सारी कमियां दूर हो गई, इस दीन पे आके सब कंप्लीट हो गया, पूरा वे ऑफ लाइफ अल्लाह ताला ने दे दिया। अकमल तुलकुम दीनकुम। दीन क्या होता है? दीन की डेफिनेशन क्या है? वे ऑफ लाइफ। अल्लाह ने तुम्हारा वे ऑफ लाइफ तुम्हें बता दिया और ब्यूटीफुल करके दिया, परफेक्ट कर दी। देखे, एक है अकमल तू, एक है अतमम तू। क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है? एक का मतलब है परफेक्ट करना, एक का मतलब है कंप्लीट करना। मसला ना कि आपको मैं कोई चीज देती हूं, मिसाल के तौर पे आपको मैंने अपनी गाड़ी दी, मसलन अब जैसे थी गाड़ी तो है, पूरी कंप्लीट गाड़ी है, उसमें हर चीज जैसे गाड़ी में होती है वैसे होनी, जैसे होनी चाहिए वैसे है, लेकिन उसमें परफेक्शन नहीं है। आप कहते हैं इसके अंदर अगर ये चीज होती ना तो बेहतर था, इसके अंदर अगर इस तरह की सीट होती तो अच्छा था, अगर इसके अंदर पावर स्टेयरिंग होता तो अच्छा था, अगर इसके अंदर ऑटोमेटिक होती तो अच्छी थी। अब है तो वो कंप्लीट गाड़ी, लेकिन परफेक्शन उसके अंदर वैसी नहीं है। अगर इसके मैट, अगर इसकी कलर, अगर इसकी ये चीजें होती तो ये फिर वाकई परफेक्ट हो जाती। तो परफेक्शन में और कंप्लीशन में जरा सा डिफरेंस है। दीन अल्लाह ने परफेक्ट भी करके दिया, परफेक्ट हो गया, यानी अब इसके अंदर कोई चीज की गुंजाइश नहीं है कि आप कहें कि ओ अगर ये ऐसे होती ना तो फिर ये दीन सबसे अच्छा होता। जब कोई चीज कमाल को पहुंच जाती है ना, कमाल को, अकमल तू, कमाल को पहुंच जाती है, बेस्ट होती है वो। अब इसमें गुंजाइश नहीं है कोई कि आप इसको मजीद बेहतर कर सकते थे, ये ऑलरेडी बेस्ट अल्लाह ने बना के दे दिया। और कंप्लीट का मतलब क्या? अब कंप्लीट चीज है, मिसाल के तौर पे आपने कंप्लीट कोई डिश बना दी, अब कंप्लीट है वो, अब आप कहते हैं नहीं मैं और इसमें थोड़ा नमक डाल देती हूं, तो वो तो बिल्कुल जहर ही हो जाएगी क्योंकि वो कंप्लीट हो चुकी थी, और थोड़ा इसमें पानी डाल देती हूँ। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं, जो चीज कंप्लीट है, मिसाल पानी का ग्लास है ऊपर तक भरा हुआ, कंप्लीट है, अब इसमें और पानी डालेंगे तो क्या होगा? तो जो चीज कंप्लीट होती है उसमें गुंजाइश नहीं होती कि आप उसमें कोई इजाफा करें। अब ये दीन कंप्लीट है, अब आपको जरूरत नहीं है इसमें इजाफे करने की। अब ये मैंने किसी को ख्वाब आ गया उसने इजाफा कर दिया, किसी को कुछ हो गया उसने इजाफा कर दिया। देखिए ये पहले भी हमने बात पढ़ी है ना, क्या नुकसान होगा अगर दीन में लोग इजाफे करने लगे, हर जेनरेशन में इजाफा। मिसाल के तौर पर साल में हर बंदे ने एक इजाफा किया, जब से ये दीन चला था एक एक इजाफा करता चला गया, तो क्या होता? आज तक 1400 इजाफे तो हो चुके होने थे, तो आपको दीन अपनी असल सूरत में तो नहीं मिलना था। हम कहते ना आया, हमने पढ़ा था ना, ला तगलू फी दीनकुम, हद से ना बढ़ो दीन में अपने। तो जब इजाफे होने लगते हैं दीन में, लोग हद से बढ़ने लगते हैं, वो उसके अंदर और चीजें मिलाने लगते हैं, तो उससे नुकसान है, अपनी असल शक्ल में वो चीज नहीं रह जाएगी जो ओरिजिनल अल्लाह की तरफ से आया था, ओरिजिनल फॉर्म में। हर एक इंसान ओरिजिनल मांगता है, कॉपी को कोई नहीं पसंद करता। अब एक कपड़ा है, आप कहते हैं ओरिजिनल मिले, कॉपियां उसकी बाजार में जितनी भी होंगी उसकी वैल्यू वो नहीं होगी जो ओरिजिनल की होगी, समझ आई? तो अल्लाह का दीन 1400 साल बाद भी ओरिजिनल फॉर्म में इसलिए है कि इसको अल्लाह ने तमाम कर दिया, इसके अंदर कोई इजाफा नहीं हो सकता। अगर कोई इजाफा करेगा तो खुद बताएं आगे 1400 साल बाद क्या हाल होगा, बिल्कुल ही कुछ और बन गया होगा, जैसे इन लोगों के दीन बन गए। आज आप देखेंगे इनके दिनों का तो कोई हुलिया हाल ही नहीं रह गया। तो ये इस्लाम के साथ नहीं हो सकता, इसीलिए बिदत का इतना बुरा अंजाम है कि जहन्नुम है उसका ठिकाना जो बिदत जाता था। हम कहते तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, इसमें क्या फर्क पड़ गया? लो मैं तो कोई नेकी का ही काम कर रही थी। तो बिदत नेकी को ही समझ के किया जाता है, बिदत को बुरा काम तो नहीं समझ के किया जाता। लेकिन इजाफा है ना, ये है इसके अंदर कबाहत। आज समझ लेंगे क्या रीजन है, क्यों इतनी बुरी इसको समझा जाता है। हम तो बड़ी अच्छी इंटेंशन से कर रहे हैं। तो अतमम तू, अल्लाह ने तमाम कर दिया खुदा के लिए, अब इसको ऐसे ही कबूल कर लो, मुकम्मल है ये। अब मेरी और आपकी जरूरत नहीं है कि हम अपनी अकल दौड़ाएं कि अब हम फलां दिन को कुछ ज्यादा सेलिब्रेट शुरू कर दें, या फलां दिन का भी हम, अब क्रिसमस आ रही है, आखिर क्रिसमस कितनी अच्छी चीज है ना। देखें अब ईसा अलैहि सलाम की बर्थडे ही मना रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, हम भी मना लेते हैं, हम भी तो आखिर उनको पैगंबर मानते हैं। अतमम तो तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया है, इसमें और कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे दीन ने तो सबसे ज्यादा इन पैगंबरों को माना है, ये तो किसी को नहीं मानते, कोई किसी को मानता और किसी को नहीं मानता, हम तो वो हैं जो सबको मानते हैं। लेकिन हमें ये नहीं कहा गया कि अब हम बर्थडे उनकी मनाना शुरू कर दें। तो अतमम तू तमाम हो गया, इसको मुकम्मल समझे, ये कंप्लीट है। ना किसी आलिम दीन को, ना किसी इमाम को, ना किसी औलिया अल्लाह को, ना मुझे और आपको, किसी को जरूरत नहीं है कि इस दीन में एडिशंस करे। अब अपनी तरफ से मनमानियां करे, अपनी तरफ से जब हम कोई चीज इसके अंदर ऐड करते हैं, तो क्या हम ये कहना चाहते हैं दीन मुकम्मल नहीं था, ये मेरी ही बात की जरूरत थी जो इसके अंदर आई, क्या कहना चाहते हैं? नहीं था मुकम्मल दीन, नहीं। जब हमने मान लिया है कि दीन मुकम्मल है, तो इसके बाद हम जुर्रत ना करें कि हम इसके अंदर और चीजें शामिल करें। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह ताला ने डिक्लेयर कर दिया कयामत तक के लिए कि अल्लाह तुम्हारे से क्या चीज से को पसंद करता है, किस दीन को तुम्हारे से पसंद करता है, इस्लाम को सिर्फ। रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह ने सर्टिफिकेट दे दिया, अब के बाद कोई और दीन ऐसा नहीं है जो कोई कह सकता है कि अब कोई और दीन अल्लाह को पसंद आ गया, नहीं। अल्लाह ताला ने अब बता दिया, अब कयामत तक के लिए यही दीन है जिसको अल्लाह ताला ने अप्रूवल दे दिया। और इसीलिए हम देखें दुआएं भी जब करते हैं तो हम कहते हैं रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन, हम भी इस्लाम के दीन होने पे राजी हो गए, हमने भी इस्लाम को अपनाया, हमारे लिए यही काफी है। तो ये जो आयत है, ये इसका शाने नजूल ये है कि अरफा का दिन था, जो आपको पता है कि बड़ा मुबारक दिन है। तो मैदाने अरफात में जबले रहमत के करीब अल्लाह ताला का जो खास नजूल रहमत का मकाम है, असर के बाद का वक्त था, और वो भी एक मुबारक वक्त है, और जुमे का दिन था। तो उस दिन ये कहा जाता है कि बाज रिवायत में कि इस वक्त ही ये आयत नाजिल हुई थी। तो हज का सोचें वक्त है, और हज में भी अरफा का दिन ही हज का होता है। तो ये इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया है, और अल्लाह ने परफेक्ट कर दिया, परफेक्शन के साथ आप तक भेजा है। अब अगर कोई इंसान इसके अंदर कुछ ऐड करता है तो क्या सोचता है कि ये परफेक्ट नहीं था, मैं इसको परफेक्ट बनाऊं, ये सोचते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये परफेक्ट है। तो उस वक्त सहाबा का बयान है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत वही के जरिए नाजिल हुई, तो इतना वही का जो बोझ था, इतना महसूस हुआ कि ऊंटनी उससे दबी जा रही थी, यहां तक कि ऊंटनी बैठ गई। और अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि आयत तकरीबन कुरान की आखिरी आयात में से है, इसके बाद कोई आयत अहकाम से मुतल्लिक नाजिल नहीं हुई, ये वो उनका फरमान है। तो इसका खास एक शान इस आयत की है। तो एक दफा उलमाए यहूद हजरत उमर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि आपके कुरान में एक ऐसी आयत है, अगर यहूदियों पे नाजिल होती ना तो वो उस दिन को ईद कर लेते, जश्न मनाते उस दिन को। ये अगर इतनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने फरमा दी, इतनी बड़ी, यानी आपको गिफ्ट मिल गया ना, बहुत बड़ा प्राइज, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसा दीन आपको आपको बिल्कुल परफेक्ट करके दे दिया है, और कंप्लीट करके आपको दिया है, किसी और को नहीं, किसी और के दीन के अंदर ये बात नहीं आई थी। वो कहते हैं अगर हमें ऐसी आयत मिल जाती ना तो हम तो जश्न मनाते उस दिन। तो उन्होंने पूछा कौन सी आयत, तो कहते यही अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। तो हजरत उमर ने जवाब दिया कि हाँ हम जानते हैं कि ये आयत किस जगह और किस दिन नाजिल हुई। तो यानी वो अरफा का दिन था और जुमे का दिन था, तो यानी हमारे लिए तो वो ईद का ही दिन था। और इस उनके जवाब में एक असूल की तरफ भी इशारा है। तो और वो ये है कि हर एक मुल्क में देखें, हर एक लोग अपने अपने मुताबिक कोई दिनों की यादगारें मनाते हैं, कोई दिनों को ईद बनाते हैं, कोई दिनों को करते हैं, लेकिन हम खुद से डिटरमिन नहीं करते कि कौन सी हम किसी शख्सियत की यादगार, किसी का बर्थडे, किसी का डेथ डे, किसी का या उनकी कोई ऐसी यादगारें हम बना लें और फिर हम उसको ईद का दिन बना लें, ये हम नहीं करते। हमें अल्लाह ताला ने जो ईद के दिन दिए हैं वो हम बस उनके ऊपर ईद करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इमाम कहा, इमामुल अंबिया है और अबुल अंबिया है, सॉरी अबुल अंबिया है। तो वो उनकी उनको एक उम्मत करार दिया कि पूरी उम्मत जितना काम करे उतने एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। लेकिन आप देखें ना उनकी पैदाइश का दिन मनाया जाता है, ना उनकी मौत का दिन मनाया जाता है, ना उनके बेटे की पैदाइश का दिन मनाया जाता है। तो आप इस तरह हमारे यहाँ नहीं होता। हाँ जो आमाल है ना, जो चीजें दीन के मकासिद से मुतालिक हैं, उन चीजों की याद रखी जाती है। मिसाल के तौर पे सफा मरवा की में दौड़ना है, या कुर्बानी करना है, या खतना करना है, तो ये उस अमल के साथ था। लेकिन अदरवाइज किसी बड़े आदमी की डेथ या बर्थडे के साथ नहीं कुछ मनाने का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अल्लाह अकबर। तो ईसाइयों ने देखें फिर क्या गुलूफ किया कि उन्होंने अपने पैगंबर के यौम पैदाइश को ईद बना लिया, और हमारे यहाँ मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे ईद मिलादुन्नबी का नाम दे के एक और ईद बना ली कि ये भी एक ईद है। अगर इस तरह देखा जाए तो बाकी पैगंबर भी तो हैं, 1,24,000 पैगंबर जो कहा जाता है आए, तो फिर उनकी भी उनके साथ हमें कोई वो थोड़ी है, उनकी भी तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, फिर उनके भी दिन मनाने शुरू कर दें। तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा पूरे साल में जिस दिन आप ना मनाएं। इसी तरह फिर एक हजरत इमाम हुसैन की शहादत का क्यों मनाया जाए, फिर हजरत उस्मान भी हैं, उनकी भी शहादत हुई और बड़ी मजलूमियत की हालत में हुई, हजरत उमर भी हैं, उनकी भी शहादत हुई, उनके क्यों नहीं मनाए जाते। और भी सहाबा हैं जिनकी शहादतें हुई, वो बड़े कबायर सहाबा में से हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है। तो इस तरह से हमारे यहाँ यादगारें नहीं मनाई जाती। तो इस हम वही चीज को ईद का भी दिन बनाएंगे जिसको अल्लाह ताला ने हमारे लिए ईद का दिन बनाया। तो ये बहुत बड़ी एक प्राइज समझने, या एक बहुत बड़ी खुशखबरी, या एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा समझने के जो इस फॉर्म में हमारे पास आया कि अलयौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, खुशखबरी समझ लें मुसलमानों के लिए कि बस अल्लाह ने कमाल का करके, परफेक्ट करके आपको दीन दे दिया और कंप्लीट करके दे दिया, और आज से आप लोगों के लिए इस्लाम को ही दीन के तौर पे पसंद किया। कयामत के दिन अल्लाह ताला जब से इस्लाम आया उसके बाद से जितने भी इंसान आए हैं उनको अल्लाह ताला जज करेगा इस्लाम की बुनियाद पे। इस्लाम होगा तो बाकी उनके अमल देखे जाएंगे, इस्लाम ही नहीं है तो फिर उनके लिए तराजू ही नहीं कायम की जाएगी कि उनके अमाल तोले जाए। ठीक है, तो इस इस्लाम की बेस पे कयामत के दिन फैसले होंगे, और इस्लाम वे ऑफ लाइफ का नाम है। ये सिर्फ एक मुंह से बोलने की बात नहीं है कि मेरे रिलीजन के खाने में इस्लाम लिखा हो। फमने तुरा गैरा बागिन, तो वहां पे सूरह बकरा में फमने तुरा फी मखमसदन, यहाँ पे क्या है, जो कोई मजबूर किया जाए। पीछे से ही बात कनेक्ट हो गई कि अगर कोई बहुत ही ऐसी मजबूरी की हालत में आ गया कि जान जाने का खतरा है, फी मखमसदन भूख में है इतनी ज्यादा, और गैरा मुतजाने फिर लिखित में नहीं मायल होने वाला गुनाह की तरफ, यानी उसकी खुद नहीं कोई डिजायर नहीं अपने अंदर के मैं ये वाला गोश्त खा लूं, ये हराम खा लूं, ये ऐसे खा लूं, अब वो जी वहां की खीर आई है, वो जी फला मिजार से आई हुई है, वहां के खाने आए हुए हैं, तो अब बड़ा दिल कर रहा है देख का पका हुआ ये फला, वो बड़ी बड़ी चीजें बांटते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं जो किस किस के नाम की होती हैं, बड़ी चटखारेदार लग रही है, तो अब बड़ा दिल कर रहा है खाने का, तो अब मजबूरी है, घर में कुछ पकाया भी नहीं हुआ तो चलो ये खा लेते हैं। नहीं ऐसे नहीं, मजबूरी ऐसी कि भूख ऐसी हो कि इंसान का मरने मर जाएगा अगर वो नहीं खाता, तब खा सकता, तब भी मायल होने वाला ना, तब भी ये ना सोचे कि अच्छा अब मौका तो मिल गया अब पेट भर के ही खा लो, नहीं उतना ही फिर सिर्फ कि जिससे जान बचे, तो इस्तरारी हालत के लिए है सिर्फ। अब बाज लोग झटके के गोश्त को भी इस्तरारी कह देते हैं कि वो भी तो ऐसे है क्योंकि हमारी मजबूरी है ना, हमें कुछ नहीं मिल रहा, ऐसा तो नहीं है, मर तो नहीं रहे भूख से, वेजिटेरियन भी तो लोग हैं, वो लोग भी तो खाते हैं वेजिटेबल, खा के जी रहे हैं कि नहीं जी रहे, तो फिर आपने गोश्त जरूर खाना है अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे मिलता ही नहीं है, सिर्फ मुर्दार ही मिल रहा है, क्योंकि वो तो मुर्दार है, आपको कह दिया गया जो चोट लग के मरा वो भी मुर्दार है। अब कुछ लोग इसमें से निकाल लेते हैं नहीं जी अरबी लोग तो खाते हैं वो, तो इस क्योंकि मिस्र के एक स्कॉलर थे जिन्होंने ये फतवा इसके ऊपर दे दिया हुआ था, बहुत सारे लोगों ने उनकी मुखालफत भी की थी, लेकिन उसके बाद से आप देख लेंगे कि ये लोग काफी हद तक उनको फॉलो करते हैं, और जब कुरान ने ये बता दिया तो फिर क्या जवाब रह गया। फइन अल्लाह गफूर रहीम, बस बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है, मेहरबान बख्शने वाले की यहाँ पे क्यों बात आई, हाँ इसलिए कि अगर कोई मजबूर हो गया ना भूख में इतना है तो हराम चीज खाना वैसे गुनाह है, लेकिन अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला, तुम उस वक्त हराम खा सकते, वो मेहरबान है, उसने ये नहीं कह दिया मर जाना लेकिन खाना ना, वो मेहरबान है, उसको पता है कि इंसान इतना मजबूर हो गया। यस अलून का मादा उहिल्ला लहुम, वो पूछते हैं आपसे कि क्या कुछ हलाल किया गया उनके लिए। अब ये मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, और ये वो सवाल हैं जो कुराने पाक में कुछ जगहों पे आए हैं, बस कहते हैं 15 जगहों पे, बस मैं 13 भी पढ़ा, बाहर कैफ 15 दफा ये आए हैं सवालात। अब इसके अंदर सहाबा ने कुछ चीजों के बारे में सवाल किया, जैसे यहाँ पे आता है यस अलूना का मादा अहिल्ला लहुम, वो सवाल करते हैं क्या कुछ हलाल किया गया उनके लिए, यानी क्या कुछ है हलाल, तो क्या अभी बता तो दिया गया, फिर क्यों सवाल उन्होंने ये किया, इसलिए कि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। वैसे सहाबा बहुत ज्यादा सवाल नहीं किया करते थे, बल्कि वो इंतजार करते थे कोई बद्दू आए वो ही सवाल कर ले, कसरत सवाल से क्योंकि मना किया गया था, अनलेस कि कोई बहुत ही कंफ्यूजन की बात हो। अब ये कंफ्यूजन ये हो गई कि बनी इसराइल में तो बहुत सारी चीजें उन्होंने खुद ही हलाल या हराम की हुई थी, तो उनके बारे में क्या है, और दूसरा ये वमा अकल असवा, यहाँ पे कहा गया ना जो दनिंदा चीर फाड़ दे तो उसको भी नहीं आप खा सकते, तो वो तो शिकार करते थे, शिकारी कुत्ते उनके पास होते थे, वो उनको भेजते थे, तो शिकारी कुत्ता अगर कुछ यानी काट के कुछ वगैरह उसके दांत लगेंगे कुछ पकड़ेगा तो क्या वो भी खा सकते हैं, या वो भी इसी में आ गया सबू की दरिंदा, कुत्ता भी एक दरिंदा ही है, उसने खा लिया उसमें से, तो क्या वो हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, तो उसको यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जहां पे भी यस अलूना का आएगा फिर आगे कुल आता है, सूरत अहा में सिर्फ फ कुल आया था, यहाँ पे है कुल, तो उन्होंने सवाल किया क्या है हलाल उनके लिए, यानी पूरा नहीं सवाल बताया गया लेकिन इस बारे में सवाल था कि इनके बारे में क्या है कि जो शिकार हम करके लाते हैं तो वो उसका क्या हुक्म है। कुल कह दीजिए अहिल्ला लकुम तय्यिबात, तुम्हारे लिए तमाम तय्यिब चीजें पाक चीजें साफ सुथरी चीजें वो हलाल हैं। देखिए शरीयत का मयार कितना खूबसूरत है कि पाक चीजें, लेकिन आप पाक चीजों को कौन बताएगा कि कौन सी पाक चीजें, मेरी और आपकी मर्जी से तो नहीं चीजें पाक होंगी कि ये मेरा दिल करता है तो इसलिए मैं इसको पाक, अब आप अल्लाह माफ करे इन चाइनीज के पास चले जाएं वो कहेंगे जी वो भी बड़ा पाक है जो सांप है और कुत्ते भी पाक है वो तो उनको भी पाक कर देंगे, तो ये हमारी कहने से नहीं पाक होगा, अल्लाह ताला ने जिन चीजों को पाक करार दिया वो वही चीजें हैं जो हलाल हैं और हलाल तरीके से आप उनको हासिल करते हैं। ठीक है, तो आ, 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 उन कह दीजिए आप ए नबी, आप कह दें कि हलाल की गई है तुम्हारे लिए जो भी तय्यब चीजें हैं। अच्छा, अब एक बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि बाज दफा जब हम कुछ दीन में आगे थोड़ा बढ़ने लगते हैं ना, तो हमारा क्या काम हो जाता है, हर चीज को हराम हराम हराम, ये भी हराम वो भी हराम। पर हराम करने का हमें बड़ा शौक होता है। आपको पता है, हराम करना किसी चीज को इतनी बड़ी बात है, ये सिवाय अल्लाह ताला की अथॉरिटी के किसी और के पास अथॉरिटी नहीं कि वो चीजों को हराम करे। समझ आए? कोई और ये अथॉरिटी नहीं रखना। इसलिए बहुत सोच समझ के करना चाहिए ये बात कि फलां चीज हराम हो गई, फलां चीज हराम। जैसे आप हलाल नहीं कर सकते, इसी तरह हराम भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह अनाम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या बात है तुम्हें, ये ईमान वाला तुम क्यों हराम करते हो उन चीजों को जो तय्यब है, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिस्क दिया उनको क्यों हराम कहते? तो खुद नहीं आप कर सकते। ये हमें समझना चाहिए कि सारी चीजें खाने की भी हलाल हैं, सिवाय उनके जो अल्लाह ताला ने हराम कर दी हैं। ठीक है? वमा अल्लमतुम मिनल जवारही, और जो सिखाया तुमने किसको, मिनल जवारही, शिकारी जानवरों को, मुकल्लिबीना, जिनको तुम शिकार की तालीम देते हो, उन शिकारी जानवरों को जो तुमने सिखाया, वो भी तुम्हारे लिए हलाल है। ये मतलब नहीं कि वो शिकारी जानवर हलाल हो गए, मतलब ये है कि जो वो पकड़ के लेकर आती हैं, जिनको तुमने सुधाया हुआ है, जिनको हम कहते हैं ना सुधाए हुआ जानवर है, यानी आप पता है कुत्तों की भी ऐसी ट्रेनिंग होती है जिससे वो शिकार को कैसे पकड़ना है, कौन से शिकार को पकड़ना है, क्या है, फिर उनको छोड़ते हैं तो वो पकड़ के लाते हैं। फिर तो तुअल्लिमूना हुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, तुम सिखाते हो उनको उसमें से जो अल्लाह ने तुमको सिखाया, तुमने जो इन जानवरों को सुधाया है वो उस इल्म में से है जो अल्लाह ने तुमको सिखाया। तो क्या मतलब है, अल्लाह ने तो कोई वही नहीं उतारी इस बारे में कि शिकारी जानवर को कैसे सुधाना है, ऐसी तो कोई वही नहीं है। फिर क्या इसका मतलब हुआ मिम्मा अल्लामकुमुल्लाह, ये बड़ा एक जबरदस्त खूबसूरत पॉइंट है यहाँ पे। वो ये है कि असल में अल्लाह ताला ने ना इंसान की फितरत में इल्म रख दिया, और इंसान अपनी अकल से जिन चीजों को, जिस नॉलेज को एक्वायर करता है, वो अल्लाह की तरफ से ही है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने, आपको बताया था सूरह बकरा में, अल्लाह ताला ने उलूम सिखाए थे ना, वो दुनियावी उलूम जो आदम अलैहिस्सलाम को, जिनको हम कहते हैं ना दुनियावी उलूम, चीजों के नाम जो सिखाए थे, वो वदियत कर दिए हैं इंसान के अंदर, रख दिए हैं। अब इंसान उनको एक्सप्लोर करता है, अपनी अकल से उनको एक्वायर करता है उस नॉलेज को। तो वो सारे उलूम अल्लाह की तरफ से ही सिखाए हैं। इसीलिए मैं आपको पहले भी हमेशा कहती हूँ कि ये कोई चीज नहीं होती कि ये दुनियावी इल्म है और ये दीनी इल्म है और ये है। ये जो हमने तकसीम की हुई है ना, ये हमने खुद ही की हुई है, हालांकि ये तकसीम सही नहीं है। क्यों क्यों सही नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखें, याद रखिए, जो जो इल्म भी, जो तालीम भी आप जिस मकसद से ले रहे हैं ना, वो उसको बताती है कि ये दीन का इल्म है या फिर दुनिया का इल्म है। समझ आई कि किस मकसद से आपने पढ़ा है? हर इल्म अल्लाह का इल्म है, अगर वो इस मकसद से है कि इसके जरिए अल्लाह की पहचान हो, इससे जरिए मैं अपने दीन की खिदमत करूं, इसके जरिए से मैं अपनी दीन को बेहतर करूं, या इसके जरिए मैं अपनी इबादत को बेहतर करूं, या इसके जरिए मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत करूं और अल्लाह को राजी करूं, ठीक है, तो ये दीन का ही इल्म बन जाता है। मिसाल के तौर पे कोई कोई साइंटिस्ट है, उसने एक मिसाल के तौर पे एक वैक्सीन निकाला है एक बीमारी के लिए, जिससे बहुत सारे लोगों की जान बच सकती हो, तो ये क्या है? अगर उसकी नीयत ये है कि ये अल्लाह की मखलूक है और मैंने इसको फायदा देना है, मेरी जात से खैर आए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे ज्यादा बेहतरीन हुआ जो सबसे ज्यादा नफामंद हो लोगों के लिए, तो मैंने वो नफामंद बनना है। तो वही जो इल्म है ना, वो दुनिया का इल्म नहीं है, अब वही दीन का इल्म। लेकिन आपको मैं दूसरी मिसाल देती हूँ। एक बंदा है, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स की तकमील के लिए कोई इल्म हासिल करता है, तो चाहे वो कुरान का इल्म है, चाहे वो हदीस का इल्म है, वो दुनियावी इल्म है। अगर वो अपनी ख्वाहिश नफ्स की तकमील कर रहा है, मसलन है कि मुझे शोहरत मिल जाए, मुझे लोग आलिम कहें, मैं बड़ी बन बन के बैठूं, मैं यहाँ पे लेक्चर दिया करूं, मेरी भी कोई वाह-वाह हुआ करे, मैं मशहूर हो जाऊं, मेरे ऐसे ये इस तरह के मुझे पैसे मिल जाएं, ऐसे ये इजी मुझे कोई जॉब मिल जाएगी, इस तरह ये इजी वे है पैसे कमाने का, इस तरह की चीजें, तो ये दुनियावी इल्म है। ठीक है? और कोई ये कह रहा है कि मैं कोई मेडिकल की तालीम लेके इंसानियत को दर्द में जो हो उसको, उसके दर्द में काम आऊं, लोगों के दर्द दूर करूं, उनकी तकलीफ से उनको निकालूं, तो एन दीन का इल्म हो गया। क्योंकि ये सारे उलूम अल्लाह ने दिए हैं, आपका मतलब ये मैथ साइंस मेडिकल ये खुद इंसान लेकर आया, ये अल्लाह ताला ने दिए हमें, ये उलूम अल्लाह की तरफ से हैं। तो ये जो इवन कुत्तों को सुधाने का, शिकारी जानवरों को सुधाना, ये भी अल्लाह ताला ने अपनी तरफ निस्बत की, ये अल्लामकुमुल्लाह, अल्लाह ने तुमको सिखाया। तो और इल्म तो इससे कहीं ज्यादा ऊला है कि उनको आप कहें कि वो भी अल्लाह ने सिखाए हैं। वो इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं कि आप उनको कहीं अल्लाह ने सिखाए, चाहे वो कोई मेडिकल का है, चाहे वो कोई इमारतें तामीर करने का है, चाहे कोई और किसी किस्म का इल्म है जिससे इंसानियत को फायदा हो सकता है, वो सब अल्लाह ने सिखाए। ये समझ आ गई बात आज। और इसी से उलमा ने ये बात भी कही कि क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया मिम्मा अल्लामकुमुल्लाह, तो इसलिए जो सिखाने वाला होना चाहिए ना, सुधाने वाला जानवर को, वो भी मुसलमान होना चाहिए। क्योंकि जो मुसलमान होगा, ट्रेनर जब मुसलमान होगा, तो फिर वो जाहिर है वो ही है जो कि जिसको अल्लाह ताला ने इल्म सिखाया। और वो उन्होंने यहाँ से मुफस्सिरीन ने कुछ ने यहाँ से लिया इस चीज को, इस पॉइंट को लिया। बार क्या फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, तो तुम खाओ उसमें से जो रोक रखे तुम पर। यानी अब ये आप जानवर को छोड़ा और वो कोई शिकार पकड़ के लेकर आया, तो वो मालिक के लिए लेकर आया, उसको पता है कि इसमें से मैंने खुद नहीं खाना, तो वो मालिक के लिए उसने रोक के रखा है, तो अब ये जायज है खाना। वद्कुरु इस्मल्लाहि अलैह, और जब जानवर को छोड़ो, यानी शिकार के लिए, आपने देखा होगा कभी, अगर आप इस पे देख सकते हैं सर्च करके, वो कुत्ते और वो इतने इतने तेज होते हैं वो, और उनको जूं ही वो छोड़ते हैं, वो गोली की स्पीड से जाते हैं शिकार की तरफ ना। ये भी देखिए अल्लाह ताला की बहुत ही बड़ी एक मस्त सुभान अल्लाह, वे कैसे अल्लाह ताला ने इल्म दिया और कैसे इन शिकारी जानवरों को सुधाया जाता है, और कितनी तेजी से ये लपकते हैं अपने मालिक के एक इशारे के ऊपर। तो अगर तो रोक के रखा है ना, फिर तो आप खा सकते हैं। अगर नहीं, उसने मालिक के नहीं रोक के, मालिक के लिए नहीं रोका और खुद उसमें से उसने खा लिया, तो फिर हराम है। लेकिन आप देखेंगे जो सुधाए हुए कुत्ते होते हैं या सुधाए हुए जानवर होते हैं, फिर वो खुद नहीं खाते, यही तो उनकी ट्रेनिंग होती है। वज़कुरु इस्मल्लाह अलैहि, अल्लाह का नाम उस पे लो, यानी बिस्मिल्ला ही अल्लाह अकबर कह के, या बिस्मिल्ला कह के उसको छोड़ो जानवर को। वत्तकुल्ला, और डरो अल्लाह से, यानी तकवा इसी चीज का तो नाम है कि हर काम करते हुए इंसान को ये हो कि अल्लाह इस काम से मेरे अल्लाह तो नहीं नाराज हो जाता, मैंने अपने अल्लाह को नाराज नहीं करना बस। इन अल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्द जल्द हिसाब लेने वाला है, यानी हिसाब तो ज्यादा देर लगनी नहीं है, मरते ही शुरू हो जाना है। तो ये सारी वो चीजें हैं जिनका जिनको सीरियस लेना जरूरी है, इसलिए कहा गया कि ये अल्लाह ताला जल्दी हिसाब लेने वाला है, यानी इनको ऐसे इग्नोर ना कर देना, जल्दी हिसाब हो जाना तुम्हारा, या उनको लाइट ना लेना। अलयौम अहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, आज के दिन तय्यिबात तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई। फिर दोबारा बताया गया तय्यिब चीजें, क्योंकि बाज दफा इंसान तय्यिब चीजों को अपनी अपनी तौर पे डिफाइन करता है, तो बता दिया गया कि जो भी पाक हलाल चीजें हैं वो तुम्हारे लिए आज हलाल कर दी गई, यानी जो कुरानो हदीस में आई है। जिन ये भी इसका मतलब है कि यानी अब दीन जो मुकम्मल जो हो गया, तो अब वो चीजें जो बनी इसराइल ने कोई अपने यहाँ पर हलाल कर दी, हराम कर दी नहीं थी, कोई कुछ कर दी थी, या अल्लाह ताला ने उनके ऊपर हराम कर दी थी उनकी बाज गलत कामों की वजह से, वो अल्लाह ताला ने बता दी है कि तय्यिब जितनी भी उनमें है वो सारी तुम्हारे लिए हलाल है। व तआमुल्लदीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम, जो ताम है जो खाना है उनका, जो अहले किताब है किताब वाले हैं, उनका खाना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया। उनका कौन सा खाना, यहाँ पे उनकी सब्जियों और फ्रूट्स और इनकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे उनके गोश्त की बात हो रही है। क्योंकि सब्जियां वगैरह ये वगैरह चीजें तो आप किसी की भी लेके खा सकते हैं, आप कोई मुशरिक है उसकी भी खा सकते हैं, उससे भी लेके खा सकते हैं, कोई और देहरिया उसकी भी खा सकती हैं। तो अहले किताब का यानी गोश्त, उनका ताम से मतलब है गोश्त, वो आप खा सकते हैं। अब एक बात यहाँ पे सवाल आता है कि उनका गोश्त कैसे खा सकते हैं। देखें उनकी भी किताबों में आपको पता है कि यही जिबाह का तरीका था जो हमारे यहाँ है,
अब वो अलग बात है कि उन्होंने बाज में चेंज कर दी, बाज उसको फॉलो ही नहीं करते। जैसे यहूदी तो आज तक फॉलो करते हैं, यहूदियों का कोशर है वो जिबा ही का तरीका है, इसलिए उनका हलाल किया गया कि उनका एग्जैक्ट सेम है, तो वो फिर आप खा सकते हैं। मगर ईसाइयों ने अपना छोड़ ही दिया, अपना तरीका ही बदल दिया। तो ताम से समझ आ गई ना, ताम से मतलब है कि यानी उनका गोश्त वो जो उन्होंने अपने मुताबिक किया हुआ, जो उनकी किताबों में भी वैसे ही है, और वो ही तय्यब होगा ना, वही जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में पाक साफ है। वो जो गोश्त जिबा किया गया, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर वो मर गया तो वो तय्यब नहीं है, ठीक है। तो आप अहले किताब का भी मुर्दार नहीं खा लेंगे, वो हलाल नहीं हो जाएगा। देखें आप इससे ही सोच लें, फिर बाज लोग यहीं से दलील लेके कहते हैं नहीं तो फिर क्या, कुरान में तो लिखा हुआ है अहले किताब का खाना जायज है गोश्त, तो वो तो आपको मुसलमान भी अगर मुर्दार देगा आप तो वो भी नहीं खा सकते, अहले किताब का कहां से खा सकते हैं आप। अहले किताब तो खिंजीर भी खाते हैं, तो आप कहेंगे अहले किताब का तो खाना हलाल है तो हम तो खिंजीर खा लें। नहीं, मैंने आपको बताई वजह कि क्यों कहा गया उनका गोश्त, क्योंकि उनकी किताबों में भी तरीका यही था, इस वजह से कहा गया। वरना वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर अलैहि, अल्लाह ताला ने कहा है तुम ना खाओ, सूरह अनाम में मैंने आपको बताया ना मत खाओ वो जिसपे अल्लाह का नाम ही ना लिया जाए। तो अगर वो अल्लाह का नाम नहीं ले रहा है तो नहीं खा सकते। हाँ, तरीका भी वही होना चाहिए जो जिबा का है, जिसके अंदर वो चार रगे कटनी चाहिए जो कि जानवर की काटी जाती है, पूरी गर्दन ना उतारी जाए, और वो रगे काट के जिससे खून बह पड़े और नाम अल्लाह का लिया जाए, ये दो शरायत हैं जिबा की। अगर वो शरायत ही नहीं पूरी करते, और यही उनकी शरीयत में भी था, तो फिर कैसे खाएंगे। तो ये मतलब नहीं है कि अहले किताब का है तो जो मर्जी खा लो, अब वो आपको जैसा भी गोश्त दें वैसे। आप मुझे बताएं अहले किताब आपको गला सड़ा गोश्त दे दें खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। तो आप कहेंगे नहीं गला सड़ा तो नहीं मैं खा सकती ना, हमें तो तय्यब खाने को कहा गया। तो तय्यब ये भी है तय्यब कि जो हलाल है, जो जबीहा है, और उनको भी ऐसा ही खाना चाहिए। अताआमुकुम हिल्लुन लहुम, तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है और उनका खाना तुम्हारे लिए हलाल है। अब कुछ मुसलमान आए थे, बुखारी में हदीस है कि कुछ मुसलमान आए कहने लगे कि हमारे पास कुछ लोग हैं वो हमें गोश्त देते हैं, हमें पता नहीं है कि उन्होंने सही जिबा किया या नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बिस्मिल्लाह कह के खा लिया करो। अब इन्होंने इस हदीस को लेके और उन्होंने कहा अब सारे गोश्त जो भी मैकडोनल्ड से मिले कहीं से भी मिले बिस्मिल्लाह कह लो और खा लो। हालांकि आपको पता है इसी हदीस में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि ये सवाल उन मुसलमानों के बारे में था जो नए नए मुसलमान हुए थे। यानी अब हो सकता है नए नए मुसलमान हुआ तो अब थोड़ा सा होता है ना कि इनको पता नहीं इतना सेंस है भी या नहीं, इन्होंने जिबा पता नहीं सही तरीके से किया या नहीं किया, या इनको उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना याद भी रही या नहीं रही याद, तो पता नहीं है कि इन्होंने सही भी किया था जिबा या नहीं किया। तो तब आपने फरमाया तुम बिस्मिल्लाह करके कर लो, यानी ट्रस्ट करो अपने मुसलमान भाई को, वो मुसलमान है अगर वो नाम भी लेते तो अल्लाह का ही लेता। अगर इसीलिए मुसलमान अगर भूल भी जाए ना जिबा करते हुए अल्लाह का नाम लेना, तो तब भी वो जानवर हलाल है, इसलिए कि अगर वो लेता तो अल्लाह ही का नाम लेता, ठीक है। तो वो भूल सकता है, मतलब नया नया मुसलमान हुआ है उसको नहीं याद रहा। तो इसलिए इस हदीस को लेकर और ये कहना कि हर तरह का ही हलाल हो गया, ये जायज नहीं है, ये सही नहीं है। तो यहां पे ये क्यों कहा गया वो तआमुकुम हिल्लुन लहुम, तुम्हारा खाना हलाल है उनके लिए, ये मतलब नहीं कि हम अब उन खाना लेके उनके पास चल पड़े और कहें देखो जी आप हम ये गोश्त खाएं क्योंकि हमारी बुक में लिखा हुआ है कि तुम्हारे लिए भी ये जायज है। ये बताना मकसूद है कि यानी शरीयत सेम है इस बारे में, जो तुम्हारा तरीका जिबा है वही उनका तरीका जिबा है, जो उनका तरीका जिबा है वही तुम्हारा तरीका जिबा, सेम है, हलाल और कोशर और ये सेम चीजें हैं। वलमोहसनातु मिनल मोमिनाति वलमोहसनातु मिनल लदीना उतुल किताबा मिन कबलिकुम। अब ये आगे आया शादी के बारे में। देखिए याद रखें इंसान की ना दो जरूरतें हैं, एक है खाना पीना, उससे भी उसका सर्वाइवल है, उसकी जिंदगी का बेस है, और उसकी नस्ल आगे चलना, ये भी तो उसके लिए एक उसकी बका है इसके अंदर। एक इंसान की बका है खाने से है ना, सर्वाइवल है, और एक शादी भी, क्योंकि उससे नस्ल चलेगी। अगर वो शादी नहीं करता तो उसकी नस्ल खत्म हो गई, खत्म हो गई इंसानी वो उसके आगे सिलसिला। तो अब शादी के ऊपर बात आई, अब शादी की बात के लिए बताया गया
कि अब निकाह भी किन से करना है, वल मौसनातु मिनल मोमिनात, वो पाक दामन औरतें जो मोमिनों में से हैं, और वो पाक दामन औरतें मिनल लदीना उतुल किताब मिन कबलिकुम, जो अहले किताब में से हैं, जो तुमसे पहले। अब अहले किताब की भी देखें, उतुल किताब दिए गए किताब, ये मतलब नहीं कि हम सब सोच लें वो हिंदुओं को भी तो किताब दी हुई गई है, उनके पास तो वही तो गीता है, वो फलाने के पास कोई और है, कुछ किसी के पास कोई, हर एक अपनी अपनी कोई किताबें निकाल लेगा। नहीं, कुरान ने अहले किताब या उतुल किताब सिर्फ उनको कहा है जिनके पास तौरात या इंजील आई, बस, ठीक है, औरों को नहीं। तो जब शादी करना चाहो औरत से, तो मोहसिना औरत से करो, चाहे वो ईमान वालों में से है, या मिनल लदीना उतुल किताब मिन कबलिकुम, या जो तुमसे पहले आए अहले किताब में से। तो इसका मतलब अहले किताब की औरत से मर्द शादी कर सकता है, औरत अहले किताब के मर्द से शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मोहसनात का आया लफ्ज, ठीक है, आपको ये समझना चाहिए, मोसनात अलिफ ता एंड में औरत के लिए होता है। तो इससे हमें पता चला कि वैसे तो हलाल है, लेकिन एक चीज को समझना चाहिए कि जो इसके साथ, खुदा ना करे, जो खराबियां आ सकती हैं, या जो आगे इसमें बिगाड़ पैदा हो सकता है नस्लों में, उसको भी सामने रखना चाहिए, क्योंकि हर हालात में एक जैसी चीजें नहीं होती। हजरत हुज़ैफा जब मदाइन पहुंचे तो वहां एक यहूदी औरत से निकाह कर लिया, तो हजरत उमर को इसकी इत्तला मिली तो उनको खत लिखा कि इसको तलाक दे दो। उन्होंने पूछा कि क्या वो मेरे लिए हराम है जो कि मैं उसको तलाक दे दूं, तो उन्होंने, हजरत उमर ने उनको जवाब भेजा कि मैं हराम नहीं कहता, लेकिन इन लोगों की औरतों में आम तौर पे इफ्फत और पाकदामिनी नहीं है, इसलिए मुझे खतरा है कि आप लोगों के घराने में इस रास्ते से कोई फोहश चीजों का दाखिला ना हो जाए। अब आप खुद देखें, उस जमाने में भी ये बात थी, तो आज क्या है? आज सिर्फ उनकी गोरी रंगत देख के या ब्लॉन्ड देख के उनके साथ शादियां कर लेना, सोचना कि भाई ये तो खूबसूरत है इसलिए, जबकि ये नहीं देखा कि यहाँ पे कुरान क्या कहता है। नहीं, कुरान तो कहता है अहले किताब के साथ कर लो, भाई अहले किताब के साथ कर लो, वल मोहसनात भी तो कहता है, उसको तो भूल गए कि मोहसनात पाक दामन औरतें, शरीफ औरतें। अब इनमें भी पाक दामन औरतें कितनी हैं, ये तो आपको खुद ही समझ आती होगी देख के, ये क्या हालात हैं इनके भी। और ये अंदाजा कीजिए कि आज जो मुसलमान जोड़े हैं, जो बॉर्न मुस्लिम हैं, उनके लिए भी अपनी औलादों को दीन पे चलाना और एक दीन की तरबियत, दीनी तरबियत करना और इस्लामी माहौल में उनको परवान चढ़ाना कितना मुश्किल हो गया। तो कहाँ ये कि एक बाहर की औरत, किताबी औरत ले आई जाए और वो बच्चों की तरबियत करे, तो खुद सोचे कि कितना बिगाड़ हो सकता है। तो ये एक आदमी को सोचना चाहिए कि वो सिर्फ एक वक्ती खूबसूरती को देख के उससे अट्रैक्ट ना हो जाए, बल्कि अपनी नस्लों के ईमान का सोचे कि मेरी नस्लों की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और आज मैं अपनी थोड़ी सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अगर ये शादी कर लेता हूं, तो कल को ये ना हो कि मेरे बच्चे ईमान से चले जाए। जब वो बच्चे देखेंगे कि भाई माँ तो बड़ी लीनियंट है और ये बाप तो ऐसा है, तो वो कहेंगे तो इस्लाम तो बहुत टफ रिलीजन है, हम तो नहीं इस पे चल सकते, हमारा तो माँ का ही रिलीजन ठीक है जो हर चीज की आजादी देता है। ठीक है, तो समझना चाहिए कि क्या हालात के अंदर किस चीज का हालात तकाजा करते हैं, इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं और कितने फितने, और इसके अंदर क्या सेफ होगा, ये कदम उठाना। तो जब मोमिना औरतें से या मोसिना से शादी करनी है तो उसकी शरायत है, वो भी तब करो, इजा आतई तुमुहुन्ना उजूरहुन्ना, जब तुम दो उनको उनके मेहर, यानी उनके मेहर अदा करने जरूरी है, और मेहर मैंने आपको बताया था एक टोकन होता है, ये शादी के वक्त दिया जाता है, यानी एक आदमी इस चीज का, समझ लें, एक इकरार करता है कि आइंदा के लिए इस औरत की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, वो एक टोकन दे के इस चीज का एग्री करता है। मोहसिनीन गैर मुसाफिहीन, और ये निकाह में लाने का इरादा हो, यानी घर बसाने का हो, ना सिर्फ जिनाकारी का कि सिर्फ अपनी शहवत पूरी की जाए, इसके लिए नहीं, निकाह में लाने का इरादा हो, किसी मोहसिना को, औरत को, ईमान वाली हो चाहे अहले किताब हो, वला मुत्तखिदी अखदान, और चुपी दोस्तियां करने का इरादा ना हो, इसलिए उनको अप्रोच ना करो कि उनके साथ खुफिया रिलेशनशिप रखो। अब इसमें बताएं पेपर मैरिज कहां से जायज हो जाती, जबकि कहा गया कि घर बसाने का इरादा हो, निकाह करने का इरादा हो, उनको उनके मेहर अदा करो, छुपी दोस्तियां ना उनसे लगाओ, तो फ्रेंडशिप या डेट्स या ये कहां से जवाज निकल सकता है। वह मैं यकफुर बिल ईमानी फकद हबित अमलुहु, और जो कोई कुफर करेगा ईमान के बाद तो तहकीक जाया हो गए उसके सारे अमल। यानी ये मसाइल बता दिए गए हैं, इनके मुताबिक ही चलना, इसी मुताबिक निकाह करना, इसके मुताबिक ही खाना पीना, ये आपके ईमान का हिस्सा है। कि इंसान क्या खाता है, क्या पीता है, किधर शादियां करता है, ये भी ईमान में से चीजें हैं, ये इससे अलग बात नहीं है। तो अब इनको अगर वायलेट किया गया, इनको अगर कहा गया कि मैं इनको कुछ समझती नहीं हूं, मैं तो अपनी मर्जी करूंगी, तो फिर हबी तामलू, यानी अगर ईमान के बाद कुफर, खुल्लम खुल्ला कुफर किया, यानी अमल से इनकार कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ समझा नहीं इनको और अपनी मनमानियां की, मैं नहीं इनको मानती, या फिर मुंह से बोल के कुफर कर दिया। बाज लोग अल्लाह ताला माफ करे ये भी कहते हैं कि हाँ हम किसी साथ शादी करने के लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्रिश्चियन हो जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने उनके उसमें वो मुबतला होते हैं। और बाज ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हमें कुरान के ये हुक्म नहीं बस मानना, ये बड़ा मुश्किल है। अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, वाली बात है कि बाज हिस्सा कुरान का माना, बाज का नहीं माना, यहां पे आके ये चीज हमसे नहीं होती। तो अगर ऐसा कुफर करते हो, खुल्लम खुल्ला या अमली कुफर, तो अमल जाया हो गए। वह हुआ फिल आखिरती मिनल खासिरीन, और ऐसे लोग ही आखिरत में खसारा पाने वाले हैं, जो ईमान का दावा भी करें मगर अल्लाह के कवानीन को कुछ समझते नहीं है, उनका भी इनकार करते हैं।
जी, एक बात इसके अंदर जो खास तौर पे जो लास्ट हमने आयत पढ़ी है इस हवाले से, वो ये कि बाज दफा ऐसा होता है कि कुछ मुसलमान लड़कियां शादी करना चाहती हैं अहले किताब से, और वो किताबी मर्द शहादा ले लेता है, मुसलमान हो जाता है और समझ के मुसलमान होता है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। इसमें भी हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा एक इस चीज़ को भी बुराई समझ लिया गया है कि उन लोगों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और इसको बुरा इन्फ्लुएंस समझते हैं कि हमारी बच्चियों पे बुरा असर पड़ेगा कि इसने क्यों किसी गोरे से शादी कर ली या किसी से, जबकि अगर वो मुसलमान हो गया तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि किसी एक लड़की की वजह से कोई आदमी इस्लाम ले आता है। आपको पता है हजरत उम्मे सुलैम ने अपना मेहर क्या रखा था, या अबू तलहा से फरमाया था कि आप इस्लाम ले आए, ये उनका मेहर था। तो अब हम क्या कहेंगे, ये तो शादी करने के लिए मुसलमान हुआ। ये ठीक है, अलग बात है कि हाँ उनको थोड़ा सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर उसके बाद वो मुसलमान हो अगर उनके दिल कन्विंस होते हैं, लेकिन इस चीज को इतना बुरा समझ लेना और फिर ऐसी बच्चियों को आउटकास्ट कर देना, उनके साथ नहीं बातचीत करनी, उनको एक्सेप्ट नहीं करना उनकी शादी को, ये बहुत गलत बात है। और ये चूंकि किसी के साथ वाकया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों सबको कहूंगी कि इस चीज को खुदारा ऐसे ना बनाएं कि कोई इस्लाम में दाखिल होने के लिए भी आप लोगों के रंग और नस्ल देखें और फिर सोचें कि हाँ ये पक्का मुसलमान है या नहीं है। हम किसी के फैसले करेंगे क्या? और इस चीजों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला इन अहकामात पे अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। तिलावत सुनिए।
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين